नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एशली वेंस की यह जीवनी इलॉन मस्क के आरंभिक जीवन से लेकर जिप टू, पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी तक की पेशेवर यात्रा का विश्लेषण करती है। यह केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों, तकनीकी दावों और कठोर कार्यशैली को भी सामने रखती है जिनके सहारे मस्क ने स्थापित उद्योगों को चुनौती दी। पुस्तक पहली बार 2015 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसका मुख्य कालखंड उस समय तक की घटनाओं पर केंद्रित है, न कि मस्क के बाद के सभी उपक्रमों पर। वेंस ने मस्क से लंबी बातचीत की और परिवार, मित्रों, निवेशकों तथा कर्मचारियों समेत अनेक लोगों के साक्षात्कार लिए। फिर भी पुस्तक को मस्क द्वारा नियंत्रित या स्वीकृत आधिकारिक वृत्तांत मानना सही नहीं होगा। इसका व्यापक उद्देश्य एक व्यक्ति की जीवनी के माध्यम से अमेरिकी निर्माण क्षमता, निजी अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर विचार करना है। पुस्तक यह पूछती है कि क्या विशाल औद्योगिक समस्याओं के लिए दीर्घकालिक दृष्टि, इंजीनियरिंग पर पकड़ और असाधारण जोखिम लेने की तैयारी वास्तव में बदलाव ला सकती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, दक्षिण अफ्रीका से सिलिकॉन वैली तक महत्वाकांक्षा के निर्माण की पृष्ठभूमि। पुस्तक मस्क की कंपनियों को समझने से पहले उनके व्यक्तित्व की आरंभिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देती है। दक्षिण अफ्रीका में उनका बचपन, सामाजिक अलगाव के अनुभव, अत्यधिक पढ़ने की आदत और बाद में उत्तरी अमेरिका जाने की इच्छा को वेंस इस बात के संदर्भ में रखते हैं कि मस्क के भीतर साधारण सीमाओं को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति कैसे बनी। इसके बाद जिप्टू और पेपाल का दौर दिखाता है कि मस्क पहले डिजिटल कारोबारों में सफल हुए, जहां सॉफ्टवेयर, पूंजी और इंटरनेट के तेजी से बदलते अवसरों ने उन्हें बड़ा आर्थिक आधार दिया। यह आधार बाद की कंपनियों के लिए निर्णायक था, क्योंकि रॉकेट, कार और ऊर्जा जैसे पूंजी गहन क्षेत्रों में प्रवेश केवल विचार से संभव नहीं था। पुस्तक का उपयोगी बिंदु यह है कि मस्क की यात्रा को अचानक प्रतिभा की कहानी नहीं, बल्कि अवसर, तकनीकी जिज्ञासा, धन जुटाने की क्षमता और लगातार टकरावों से बनी प्रक्रिया के रूप में पढ़ा जाए। वेंस यह भी दिखाते हैं कि पेपाल के बाद मिला धन सुरक्षित निवेशों में लगाने के बजाय मस्क ने उसे अत्यंत अनिश्चित उद्यमों में लगाया। इसलिए आरंभिक इंटरनेट सफलता को स्पेसएक्स और टेस्ला से अलग अध्याय नहीं, बल्कि उनके लिए वित्तीय और मनोवैज्ञानिक प्रस्थान बिंदु के रूप में समझना चाहिए। दूसरा, स्पेसएक्स में रॉकेट लागत घटाने के लिए निर्माण और नियंत्रण पर जोर। स्पेसएक्स का प्रसंग पुस्तक का केंद्रीय औद्योगिक अध्ययन है। मस्क ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण को केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि अत्यधिक महंगी और धीमी आपूर्ति व्यवस्था की समस्या माना। वेंस के विवरण में कंपनी का लक्ष्य पारंपरिक एरोस्पेस ठेकेदारों की लागत संरचना को चुनौती देना था। इसके लिए स्पेसएक्स ने अधिक घटक स्वयं बनाने, इंजीनियरिंग निर्णयों को भीतर रखने और डिजाइन तथा उत्पादन के बीच सीधा संपर्क बनाने पर जोर दिया। यह ऊर्ध्वाधर एकीकरण केवल स्वामित्व की रणनीति नहीं था। उसका तर्क था कि बाहरी आपूर्तिकर्ताओं और लंबी खरीद प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करके लागत, गति और तकनीकी सुधार पर नियंत्रण बढ़ाया जा सकता है। शुरुआती प्रक्षेपण विफलताएं इस दृष्टि की कठिनाई दिखाती हैं। रॉकेट उद्योग में एक गलती भारी वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा संकट पैदा कर सकती है। पुस्तक इसलिए दृढ़ता को केवल व्यक्तिगत गुण की तरह पेश नहीं करती, बल्कि परीक्षण, विफलता से सीखने और सीमित संसाधनों में अगले प्रयास को संभव बनाने की संगठनात्मक क्षमता से जोड़ती है। पाठक के लिए मुख्य निष्कर्ष यह है कि महंगे उद्योगों में नवाचार केवल बेहतर विचार नहीं मांगता, उसे डिजाइन, उत्पादन, आपूर्ति और परीक्षण के बीच गहरी समन्वय क्षमता चाहिए। तीसरा, टेस्ला का दाम। इलेक्ट्रिक वाहन को आकर्षक उत्पाद और उत्पादन चुनौती बनाना। टेस्ला के माध्यम से पुस्तक बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहन का प्रश्न केवल बैटरी या पर्यावरणीय संदेश तक सीमित नहीं था। मस्क और टेस्ला के सामने चुनौती यह थी कि उपभोक्ता इलेक्ट्रिक कार को धीमी, सीमित दूरी वाली या समझौते से भरी वस्तु न माने। रोडस्टर और बाद में मॉडल एस के संदर्भ में वेंस प्रदर्शन, डिजाइन, सॉफ्टवेयर और ब्रांड को उत्पाद रणनीति के आपस में जुड़े हिस्सों की तरह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पुस्तक तकनीकी आकर्षण के पीछे की कठिन वास्तविकता भी दिखाती है। वाहन उत्पादन में पुर्जों की गुणवत्ता, आपूर्तिकर्ताओं का प्रबंधन, कारखाने की गति, सेवा व्यवस्था और नकदी सभी साथ काम करते हैं। किसी वाहन को प्रदर्शित करना और उसे बड़े पैमाने पर विश्वसनीय रूप से बनाना अलग क्षमताएं हैं। यह अंतर टेस्ला की देरी, लागत दबाव और संचालन संबंधी तनावों को समझने में महत्वपूर्ण है। मस्क की भूमिका यहाँ उत्पाद विवरणों में असाधारण हस्तक्षेप और बहुत ऊंचे प्रदर्शन मानक तय करने वाले नेता की है। यह तरीका तेजी और स्पष्टता दे सकता है, पर टीमों पर भारी दबाव भी डालता है। पुस्तक का संतुलित सबक यह नहीं कि हर उद्यमी को ऐसा नेतृत्व अपनाना चाहिए, बल्कि यह है कि स्थापित बाजार बदलने के लिए ग्राहक अनुभव, तकनीकी क्षमता और निर्माण अनुशासन को एक साथ हल करना पड़ता है। चौथा, सोलरसिटी और परस्पर जुड़ी ऊर्जा व्यवस्था की दीर्घकालिक कल्पना। पुस्तक में सोलरसिटी का स्थान मस्क की व्यापक ऊर्जा कल्पना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इट स्पेसएक्स पृथ्वी के बाहर दीर्घकालिक मानव भविष्य की चर्चा खोलता है, जबकि टेस्ला और सोलरसिटी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के धरती केंद्रित प्रयासों से जुड़े हैं। वेंस इन कंपनियों को अलग अलग व्यापारिक घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक परिवहन के संभावित संबंध की दिशा में देखते हैं। इस दृष्टि का मूल तर्क यह है कि स्वच्छ ऊर्जा का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब बिजली का स्रोत, उसका उपयोग और परिवहन के साधन एक दूसरे के अनुकूल बने। हालांकि पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि ऐसी परिकल्पना को लागू करना अत्यंत कठिन है। सौर ऊर्जा कारोबार में वित्त पोषण, ग्राहक अधिग्रहण, नियमों और स्थापना प्रक्रियाओं की अपनी जटिलताएं होती हैं। इसलिए मस्क की भविष्य दृष्टि को केवल तकनीकी आशावाद नहीं माना जा सकता, उसे पूंजी, नीतिगत वातावरण और दैनिक संचालन की सीमाओं से गुजरना पड़ता है। इस विषय से पाठक यह समझ सकते हैं कि जलवायु और ऊर्जा की समस्याओं के समाधान अक्सर किसी एक उत्पाद से नहीं आते, उनके लिए परस्पर निर्भर प्रणालियों, दीर्घ निवेश और अलग अलग उद्योगों के बीच समन्वय की जरूरत होती है। पुस्तक की सीमा यह है कि यह 2015 तक की स्थिति का चित्र है, इसलिए बाद के ऊर्जा बाजार परिवर्तनों के लिए इसे अद्यतन स्रोत नहीं समझना चाहिए। अंत में, असाधारण लक्ष्य और कठोर नेतृत्व के बीच का मानवीय तनाव। वेंस की जीवनी की एक विशेषता यह है कि वह मस्क की उपलब्धियों को उनकी कार्यशैली से अलग नहीं करती। पुस्तक में वे अत्यधिक मांग करने वाले, समय सीमा पर जोर देने वाले और संघर्ष से पीछे न हटने वाले नेता के रूप में उभरते हैं। इसी व्यवहार से कंपनियों में तात्कालिकता, तकनीकी मानकों पर ध्यान और असंभव लगने वाले लक्ष्य पर काम करने की ऊर्जा पैदा हो सकती है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है, कर्मचारियों, सह संस्थापकों, निजी संबंधों और सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण स्थितियां दिखाती हैं कि उद्देश्य की तीव्रता अपने आप में स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति की गारंटी नहीं है। वेंस का चित्रण इस विरोधाभास को सरल नैतिक निर्णय में नहीं बदलता। वह पाठक को यह देखने देता है कि मस्क की कुछ शक्तियां, जैसे विस्तारों में डूब जाना और समझौता न करना, कई संदर्भों में उनकी सीमाएं भी बनती हैं। व्यावहारिक रूप से यह विषय नेतृत्व के अनुकरण के बजाय विवेकपूर्ण चयन की मांग करता है। किसी प्रबंधक के लिए उपयोगी प्रश्न यह नहीं कि क्या कठोरता से बड़े परिणाम मिल सकते हैं, अधिक उपयोगी प्रश्न यह है कि कौन से मानक उत्पाद की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है, कौन से व्यवहार अनावश्यक क्षति पहुंचाते हैं और संगठन में असहमति तथा जवाबदेही के लिए कितनी जगह है। इस कारण पुस्तक प्रेरक जीवनी के साथ नेतृत्व की लागत पर भी एक अध्ययन बनती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक तकनीक, उद्यमिता, औद्योगिक नीति, इंजीनियरिंग या व्यवसायिक जीवनी में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे पढ़ने से पाठक यह समझ सकते हैं कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों की कहानी केवल करिश्माई संस्थापक या चतुर विपणन की कहानी नहीं है। इसमें पूंजी की कमी, उत्पादन की बाधाएं, विफल परीक्षण, आपूर्ति संबंधी निर्णय और टीमों पर असाधारण दबाव भी शामिल है। उभरते उद्यमियों के लिए इसका व्यावहारिक लाभ जोखिम का अंधानुकरण नहीं, बल्कि समस्या को मूल सिद्धांतों से देखने, उत्पाद और निर्माण के संबंध को समझने तथा दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए वित्तीय आधार बनाने में है। प्रबंधकों के लिए यह नेतृत्व की ऊर्जा और उसकी मानवीय लागत दोनों पर विचार करने का अवसर देती है। सामान्य पाठक के लिए यह निजी अंतरिक्ष उड़ान, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा के आरंभिक परिवर्तनशील दौर का सुगम परिचय है। समान व्यावसायिक जीवनियों से इसे अलग बनाने वाली बात इसकी पहुंच और दायरा है। एशली वेंस ने मस्क के साथ बातचीत के साथ साथ उनके आसपास के अनेक लोगों के साक्षात्कारों का सहारा लिया, जिससे चित्रण केवल संस्थापक की आत्मकथा नहीं रह जाता। पुस्तक प्रशंसा और आलोचना दोनों को जगह देती है। फिर भी पाठक को इसकी समय सीमा ध्यान में रखनी चाहिए। यह 2015 तक की जीवनी है, इसलिए मस्क की बाद की कंपनियों, सार्वजनिक भूमिका और विवादों के लिए अतिरिक्त अधिक नए स्रोत आवश्यक होंगे। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एशली वेंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।